यहाँ श्रीमद् भागवतम के स्कंद 7 अध्याय 4 श्लोक संख्या 34 यस्मिन् महद्गुणा राजन् गृहन्ते कविर्मुहुः न ते धुना विघीयन्ते यथा भगवतीश्वरे यस्मिन् महद्गुणा राजन् गृहन्ते कविभिर्मुहुः न ते धुना विघीयन्ते यथा भगवतीश्वरे यस्मिन् गुणा अस्मिन् महद्गुणा राजन् गृहन्ते कविभिर्मुहुः न ते धुना विघीयन्ते यथा भगवतीश्वरे
महाराज
प्रामाणिक शास्त्र से पता चलता है कि प्रहलाद महाराज अब भी वैकुंठ लोक से साथ ही साथ किसी भौतिक जगत में रहते हैं। एक साथ विभिन्न स्थानों में रहने का यदि यज्ञ पुरुषोत्तम भगवान के रूप की योग्यता है। दो लोग एवं निवसत प्रहलाद में भूलता है, यद्यपि भगवान हरेक के हृदय में प्रकट होते हैं तो भी वे अपने निजी लोग दो लोग वृंदावन में रहते हैं। भक्त अपनी अनन्य भक्ति के कारण भगवान जैसे इसमें प्राप्त कर लेता है, सामान्य जीव इतने योग्य नहीं हो सकते। किंतु एक भक्त पूरी तरह नहीं परंतु अंत तक भगवान की तरह योग्य हो सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयिनं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सन्तजीवम् साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी निजभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वतिदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आचार्यशीर्षतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द यद्वैषगदाधर शिवासादिवारभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैसे मेरे की योग्यता नहीं है, वृंदावन धाम में आप जैसे महान साधु उनको अपने को पवित्र करने के लिए थोड़ा बहुत कुछ गुणगान करेंगे। तो आज आप लोग श्रवण कर रहे हैं अनेक दिनों से, यह अध्याय का नाम है ब्रह्मांड में हिरण्य कशिपु का आत्मा। अभी कोविड का आदमी हिरण्य कशिपु का आत्मा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन इस श्लोक में पर्टिकुलरली बेसिस के रूप से हम श्रवण कर रहे हैं प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन। अनंत गुणों का हमने श्रवण किया इससे पहले श्लोक का, और इस श्लोक में पर्टिकुलरली कह रहे हैं यस्मिन महद गुणा राजन गृहंते कवि भी मुहु। जो कवि हैं, जो विद्वान हैं, आज भी क्या करते हैं इसका प्रहलाद महाराज के गुणगान करते हैं। भगवान के साथ नित्य आप लोग भी करते हैं, मंगला आरती के पश्चात नरसिंह आरती करते हैं, प्रहलाद अल्लाह बताई भगवान के साथ प्रहलाद जी का नाम भी जुड़ा हुआ है। तो आज भी इन दिव्य गुणों का वर्णन करते कौन सा दिव्य गुण प्रश्न है कि कौन सा दिव्य गुण आप प्रहलाद महाराज या नरसिंह लीला श्रवण करते ही आपके मन में प्रहलाद जी का कौन सा ऐसा दिव्य गुण आता है। ऐसे अनेक दिव्य गुणों का वर्णन आया है, लेकिन कौन सा ऐसा दिव्य गुण बच्चा बच्चा जानता है हमारे सनातन धर्मावलंबी, जिसके कारण हम प्रहलाद जी का बड़ा गुणगान करते हैं। अनेक गुणों का वर्णन है, लेकिन इसमें से पूर्व श्लोक जो आप कल पढ़े हैं, अगर उसमें आप याद है तो पूर्व श्लोकों का पहला शब्द है न उद्विग्न चित्त, न उद्विग्न चित्त कभी ज्ञानी जो श्लोक पहले श्लोक में जो वर्णन है इसमें कह रहे हैं न उद्विग्न चित्त, है ना। इसका मतलब क्या है कि जब ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है, विचलित करने वाला परिस्थिति जब आ जाती है, उस विचलित करने वाले परिस्थिति में भी भक्त विचलित होता नहीं है। प्रहलाद महाराज के जितने गुण है उन गुणों में से विशिष्ट गुण है केवल प्रहलाद महाराज का नहीं भक्तों का भी ये विशिष्ट गुण है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, एक परपोर्ट में मैंने पढ़ा था, उसमें कहते हैं वन ग्रेटनेस हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय वन एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। वन ग्रेटनेस शुड बी एस्टिमेटेड मतलब एक व्यक्ति की महानता उसके सहन करने की शक्ति से ही जाना चाहिए कि जब विपरीत परिस्थिति आती है, संकट की परिस्थिति आती है, विपत्ति की परिस्थिति आती है, तब उस समय हम उस परिस्थिति में रिएक्ट कैसे करते हैं, प्रतिक्रिया कैसे करते हैं, उससे हम आंक सकते हैं, जान सकते हैं, उस आधार पर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि भक्त की महानता क्या है। आजकल हमारे जीवन में छोटी छोटी परिस्थिति थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस होता है, हम गुस्सा हो जाते हैं, है ना। आप मंदिर में खड़े हैं, उनको पीछे से धक्का मारा, तुरंत गुस्सा हो जाते, देख के नहीं चल सकते, विचलित हो जाते। यहां कह रहे हैं पहला जो विशिष्ट गुण है न उद्विग्न चित्तो। पहले हम इस श्लोक अगले श्लोक में जाने के लिए हम जान लें कि वास्तविक प्रहलाद महाराज का ऐसा कौन सा विशिष्ट गुण है जिनको महान बनाया है। प्रहलाद महाराज की लीला में हम श्रवण करते हैं, उनके पिता अत्यंत क्रूर एवं बहुत प्रयास किया उनको मारने के, अनेक प्रयास किया, अनेक उपायों से मारने का प्रयास किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार बारंबार प्रयास किया उनको मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद महाराज के हृदय में लेस मात्र भी द्वेष नहीं। थोड़ा सा भी कभी ऐसा मन में नहीं आया कि मेरा बड़ा पिता मेरा बड़ा क्रूर है, कोई तांत्रिक पकड़ के इसको मैं मरवा। कई बार डायरेक्ट नहीं हो सकता तो सोचते हैं इनडायरेक्ट कर ले, पिता है डायरेक्ट नहीं मार सकते, इसीलिए मैं ये सब किया। तो कहने का आशय कई बार हमारे भक्त समाज में भी होता है तो हम सोचते हैं वैष्णव समाज है डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, पॉलिटिकली इसको कुछ करता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं ना उद्विग्न चित्त, उद्विग्न नहीं विचलित नहीं होते। और देखिए भक्तों के जीवन में अनेक जो भागवतों की जितनी कथाएं हैं 90% कथाओं में भक्तों की महिमा जो है अगर हम स्थापित किया गया है तो इस गुण से किया गया। अमृत महाराज की कथा श्रवण करते हैं, उसमें क्या हुआ, अमृत महाराज की महानता भी इससे निर्धारण किया गया। जब अमृत महाराज निर्जल एकादशी के पश्चात पारण करने के लिए उद्यत थे उसी समय हमारे फेमस प्रसिद्ध थोड़ा सा गुण तो ऐड करने दो सिद्धार्थ दुर्वासा जी का नाम ले लिया, तो दुर्वासा जी वहां पदार्पण करते हैं और दुर्वासा जी कहते हैं कि मैं स्नान करने के पश्चात लूंगा। जो स्नान करने चले जाते हैं हम सब जानते ही हैं, इधर पारण का समय बीता जा रहा है तो जो संत थे वैष्णव थे ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा कि देखो थोड़ा चरणामृत ले लो, ये चरणामृत से निर्जल की टूट भी जाएगा, इसको आहार माना भी जाता है आहार नहीं भी माना जाता है, इससे आपका अपराध भी नहीं होगा। जो वैष्णव आए हैं दुर्वासा मुनि आए तो उस प्रसंग में हम देखते हैं जब कुछ समय के पश्चात जब ये ग्रहण किए तो दुर्वासा जी बड़े योगनिष्ठ ऋषि थे, उनको पता लग गया कि अमरीश जी ने मुझे बिना कुछ दिए मेरा आतिथ्य नहीं करके ये कुछ ग्रहण कर, उतने में वो विचलित हो गए, वो विचलित हो गए। कई बार हम भी विचलित हो जाते हैं छोटी छोटी बात, कई बार होता है हमारे जीवन, हमारे जीवन की बात नहीं करें तो विचलित हो गए। और इधर उन्होंने आकर साथ दिया, इतना बड़ा असुर को प्रकट कराया मारने के लिए और उसके पश्चात आप श्रवण करते हैं असुर को प्रकट कराया और उस असुर को किसी तरह सुदर्शन जी ने बदल किया, सुदर्शन जी प्रकट हो गए बच्चों की रक्षा के लिए और वही दुर्वासा ऋषि एक साल तक चक्कर लगाते रहे। और अमृत महाराज का शांत स्वभाव देखिए, उद्विग्न चित्त विचलित नहीं हुए, खड़े रहे एक साल, इतना हमारे यहाँ से लेट हो जाता है तो क्या करें, हो सकता है आपसे तो यही महान करता है। उद्विग्न चित्त मतलब विचलित नहीं होना, जब विचलित नहीं, जो विचलित नहीं होता है वही महान बनता है, यही महान गुणों का आज भी चर्चा करते हैं। इस महानता के लिए प्रहलाद महाराज की ये महानता थी कि पिता श्री अनेक प्रयास किए, विभिन्न उपायों से प्रयास किए, उसके पश्चात भी जब नरसिंहदेव भगवान ने प्रहलाद महाराज को कहा कि हे प्रहलाद आज तुम कुछ वरदान मांगो तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि हे प्रभु वरदान देना है तो मेरे पिता को वरदान, ये अभ्यर्थी इनका अपराध को देना और हम क्या करेंगे, हो सके तो इनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। तो यहाँ पिता श्री इतने अत्याचार करने के पश्चात उस पिता के लिए मुक्ति की याचना कर रहे हैं और वो भी किसके चरणों में, भगवान के चरणों में, जिनके चरणों में दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकते थे, वो छोटे मोटे अपॉर्चुनिटी नहीं था जिसको एक्सटेंड कर लिया, दुर्लभ से दुर्लभ भगवान बोल रहे वरदान मांगो कुछ भी मांगो। और आजकल तो हमें कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है जिसमें हम अगर छोड़ के जाना पड़े अपने संबंधियों को पिता माताओं को हम छोड़ के उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रहलाद महाराज को इतना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला कि कुछ भी मांग सकते हो, लेकिन प्रहलाद महाराज ने कहा कि मुझे ऐसे कृपा करो मेरे पिताजी। तो उद्वेग में चीज चाहिए, सबसे विशिष्ट गुण है भक्तों में, अनेक गुण है, उन अनेक गुणों में ये विशिष्ट गुण है। कोई विद्वान हो सकता है, हम और भी बहुत गुण है, कोई सहनशील हो सकता है, लेकिन ये सहनशील का गुण इसलिए कहते महाप्रभु ने कहा कि ना अमानी ना मान देना, अगर कीर्तन करने की इच्छा है, जब करने की इच्छा है, जब मैं अपना मन को लगाने की इच्छा है और सहित इन सारी चीजों को सहज करने का शक्ति हो, तब रूप गोस्वामी ने पहले श्लोक में कहते हैं बाजो बेगम मनसो, बोलिए बोलिए मनसो क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपृष्ट वेगम एतान वेगन विषय एक धीर जब इन वेगों को मतलब ये भी तो डिस्टर्ब करते हैं है ना, ये भी डिस्टर्ब करते हैं और उन डिस्टर्बेंस को हम सहन कर लें, इतना आसान नहीं होता इन वेगों को। पुष्पांजलि के तुरंत बाद जब प्रसाद होता है, प्रसाद में जब भीड़ में बैठ जाते हैं और जब दूसरा वाला बंदा है थोड़ा सा खिसको, इधर जगह नहीं हो रहा है, आप थोड़ा सा खिसक भी नहीं सकते हैं, वेगों को तो छोड़ दीजिए। और रंसी देवी जो थे 48 दिनों के पश्चात जब उनके पास प्रसाद आया, उस प्रसाद को भी देवता लोग परीक्षा लेने के लिए जब आए तो विचलित नहीं हुए और हमारा निर्जल हुआ हो और खाने बैठे और कोई आए बोले प्रभु जी प्रसाद आपके लिए नहीं है दूसरे के लिए खाली से, क्या होगा हमारा सारा बिल्कुल हाय हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ अर्थ ये है कि महत गुणा, यहाँ पर कह रहे महत गुणा, जो प्रहलाद महाराज के महान गुण हैं, उन गुणों का विशेष वर्णन आज तक करते हैं। क्यों करते हैं? कि ये उन्हें शांत स्वभाव से विचलित नहीं हुए थे, इसीलिए भागवतम में कहा गया है कि ऐसे भक्त बड़ा दुर्लभ होते हैं। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण प्रणायण सुदुर्लभ प्रसन्न आत्मा को भागवतम अध्याय के श्लोक में कहते हैं मुक्ता नाम की सिद्धा नाम, बहुत सारे मुक्त आत्माएं हैं, बहुत सारे सिद्ध आत्माएं हैं, उन आत्माओं जो नारायण परायण है, जो भक्त हैं, उन भक्तों में भी सुदुर्लभ प्रसन्न आत्मा, उन भक्तों में भी कोई प्रसन्न आत्मा जो कि शांत चित्त वाला है, ऐसा शांत चित्त वाला भक्त जो है बहुत बिरला होता है, वेरी रेयर। अपने ऊपर अप्लाई कर सकती है, ऐसे जो ऐसा नहीं कि इसी मीटर को लेकर चलता रहे, इसी लेवल में जो होगा उसी को रिस्पेक्ट करेंगे, उसी का सम्मान करेंगे, ऐसा नहीं। ये जो बताया जा रहा है यहाँ पर कि चरम सीमा बताया जा रहा है भक्तों की विशिष्ट गुणों की, प्रहलाद महाराज के जो गुणों का आज भी वर्णन करते हैं, लेकिन देव की यस्मिन महद गुणा, ये जो महान गुण है राजन गृहंत कभी भी महो, तो इन महान गुणों के कारण आज भी उनका गुणगान करते। परीक्षित महाराज का गुणगान क्यों करते हैं? परीक्षित महाराज के जीवन में भी देखिए, पहली बार विचलित हो गए जब बहुत प्यास लगी थी और ऋषि के जब पहुंचे हैं आश्रम में, तो ऋषि अपने ध्यान मग्न से समाधिस्थ थे, इस संसार के विषय में कोई ज्ञान नहीं था, तब उनसे ये आशा कर रहे थे कि मेरा सत्कार करे, आतिथ्य करे, जल प्रदान करे, कुछ भोजन दे, लेकिन तो समाधिस्थ थे, कैसे कर सकते थे, नहीं कर सकते। तो पहली बार तो विचलित हो गए, विचलित होने के कारण एक छोटी सी गलती हो गई, लेकिन भागवत में आचार्य कहते हैं ये गलती माया की, हमारे योग माया ने करवाई हुई, और गलती क्या करे, एक सांप उठाकर गए। ये प्रसंग में विचलित होने का तीनों का प्रतिक्रिया अलग अलग है, देखिए एक तो परिचित महाराज, एक दमिक ऋषि, एक श्रृंगी ऋषि, परिस्थिति डिस्टर्बांस का तो तीनों के लिए आया, और तीनों का व्यवहार अलग अलग है। पहले परीक्षित महाराज इसे लिख हुए जिसने की अपराध, लेकिन जो ऋषि थे वो तो नहीं। ऋषि के अपने ध्यान मन में बैठे हुए थे। ये बात जब उनके बेटा उनके पुत्र श्रृंगी को पता लगा तो श्रृंगी विचलित हो गया। श्रृंगी ने सोचा, और विचलित कब होता है व्यक्ति, जब शक्ति होती है, ताकत होती है ना, कुछ पावर होता है। गरीब इंसान को कई बार जो गरीब होता है, दुर्बल होता है, उसके ऊपर कोई भी कुछ कर दे वो बोलता है ठीक है हमारे धर्म तो बने इसलिए, है ना। और सामने वाला भी थोड़ा पावर है, बोलेगा महादेव का स्वागत आ जाते। तो इसी तरह श्रृंगी, क्योंकि ब्राह्मणत्व का उसके पास शक्ति थी, पहले जमाने में केवल उस परिवार में जन्म ग्रहण करते ही आपको मिल जाता है, उसने अपना उठा लिया, जल उठा लिया और श्राप दे दिया कि सातवें दिन देखिए ये ढोंग नहीं कर सकते आप, ये जो गुण है ना ढोंग नहीं कर सकते। आप कहोगे ढोंग करके हम सहनशील बन जाएंगे, विचलित नहीं होंगे, आप ढोंग नहीं कर सकते। ढोंग करोगे तो और कर जाएंगे, ढोंग की कथा है। हरे कृष्ण। एक बार एक कथावाचक तमाकू लेके कथा कर, किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन जब कथा करता था तो मुंह से पानी गिरता था। तो जो व्यवस्थापक थे पास में बैठने वाले ऐसे, उन्होंने कहा महाराज जी आपकी कथा में तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि एक आलोचना है कि आपके मुंह से पानी गिरता है भागवत के ऊपर, और वो पानी इसलिए गिरता था क्योंकि साइड में तमाकू दबा के कथा होती। अब सातवें दिन कथा खत्म हुई तो उसमें कोई विद्वान व्यक्ति बैठा था, विद्वानों के समाज थे, तो ये जो व्यवस्थापक थे इनसे कहा कि आपकी कथा में आनंद तो आता है लेकिन आलोचना। तो ये कथावाचक बड़े ही माहिर थे, चतुर भी थे। बोले कि मेरे सज्जनों, मेरे प्रिय बंधुओं, जब कथावाचक प्रेम से कथा करता है तो जितने भी पवित्र नदियां हैं उसके प्रेम में अभिभूत होकर उसके हृदय में पकड़ होते हैं, और मेरे मुखारविंद से जो जल गिरता है भागवत पर और कुछ नहीं है, वो तो गंगा जमुना सरस्वती की कलकल नाद करती हुई जल ही उछल के। बोल तो दिए महाराज जी अपना किसी तरह लपेट लिए। अब 7 दिन के पश्चात जब कथा समाप्त हुई तो एक विद्वान व्यक्ति आया, बोला महाराज जी आपके लिए प्रसाद है। बोले क्या प्रसाद है, देखा तो सफेद चूरन जैसा है। बोले महाराज लीजिए फिर बताता हूँ। ले लिया। लेने के पश्चात महाराज जी ने पूछा कहाँ से ये प्रसाद, ना नमकीन है ना मीठा है, ना कहाँ से लाया ये प्रसाद। बोले महाराज जी ऐसी बात है, तीसरे दिन की कथा में आपने बोला था कि आपके हृदय में गंगा जमुना सरस्वती आदि पवित्र नदियां यहाँ प्रकट हो रही हैं। ऐसी बात है कि 2 साल पहले मेरे माता जी गुजर गए, उनकी अस्थियां घर में पड़ी हुई थी और मैं हरिद्वार जा नहीं पा रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था, और आज जब सुना कि गंगा जमुना यही बह रही है तो बिना खर्चे के काम नहीं कर दो। मैंने तो होम करोगे तो फंस जाओगे, कोई ना कोई हर बोलते ना नंडले में दहला मारने वाला है, दुनिया में कमी नहीं है, एक से एक विद्वान बैठे। तो हम ढोंग नहीं कर सकते इन गुणों के प्रति, ढोंग नहीं हो सकता है। अभी तो हम बड़ी कथा सुना रहे हैं, हमें ये गुण नहीं है। आप सोचोगे स्वामी जी के ऊपर टेस्ट करें, इसके ऊपर टेस्ट करें, उपेंद्र अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, निकलते एक डंडा मारो देखते हैं कितना इसमें विचलित होता है कि नहीं। आप एक मारोगे तो हो सकता है धूप पड़ जाए आपको। इन गुणों का तो हम चर्चा कर रहे हैं लेकिन गलती मत करना, टेस्ट कर। हरे कृष्ण। तो कहने का से ये है, जो विशेष गुण है, विशिष्ट गुण है, इन गुणों को अभी हमने चर्चा की, इन गुणों के कारण हम महान बनते हैं, इन गुणों के कारण हम महान बनते हैं। तो बोलने इन गुणों के कारण महान बनते हैं, श्रवण करके भी ये गुण धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। जब श्रवण करेंगे बार 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 बार, इसीलिए कह रहे हैं अभी भी महद गुणा राजन गृहंत कबीर मोह, आज तक उसका गुणगान करते हैं। कोई कह सकता है कि गुणगान करते हैं, ये संसार का एक ही स्वभाव है, हम कोई भी काम करते हैं लाभ देखते हैं, नेचुरल टेंडेंसी है। कोई भी कार्य करते हैं तो हमको लाभ चाहिए, कुछ लाभ मिल रहा होगा तब करते हैं। तो कोई पूछ सकता है इसमें क्या लाभ मिलता क्या है, प्रहलाद महाराज के दिव्य गुणों का चर्चा करके हमें लाभ क्या मिलेगा। तो कहते हैं इसमें जैसे कहा गया है यथा भगवती ईश्वरे, लास्ट वर्ड में कह रहे हैं जैसे भगवान के गुण हैं ऐसे ही भक्तों के गुण की महिमा है। जैसे भगवान के गुणगान से, भगवान के गुणगान श्रवण से हमारे हृदय में पवित्रता आती है, इसी तरह भक्तों के भी गुणगान श्रवण से और गुणगान करने से पवित्रता आती है। इसका प्रमाण क्या है, भागवतम की तीसरे स्कंध 29वें अध्याय 11-12 श्लोक में कह रहे हैं मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहासे मनोर्गति अविच्छिन्ना यथा गंगा भसम बुदो। कहते मदगुण श्रुति मात्रेण, भगवान की गुण लीलाओं की श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहासे, जो कि सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, मनोरगति अविच्छिन्न अविच्छिन्न रूप से, विदाउट एनी ब्रेक, अविच्छिन्न रूप से जिस तरह गंगा गंगा भसो बुधो, जिस तरह गंगा अविच्छिन्न रूप से निरंतर प्रवाहित होती जा रही है और समुद्र में मिलन हो रहा है, इसी तरह भगवान की कथा श्रवण मात्रेण आपका मन अविरल भाव से अविच्छिन्न रूप से इस गंगा की तरह बहते बहते गोविंद के चरण। मदगुण स्तुति मात्र पानी में जा दिया बढ़िया, लेकिन भौतिकवादी इससे भी बड़ा फायदा ढूंढते। आप तो जानते हो कि कथा श्रवण चलो हृदय पवित्र होता है, भौतिकवादी को बोलो ऐसा कुछ लाभ मिलने वाला है, दुनिया वाला लाभ। कोई कहे भौतिकवादी भाई हमको हृदय पवित्र से मतलब, और कोई हमारा फायदे वाली बात बताओ तो हम कथा सुने। तो आगे कहते हैं हाँ भाई तुम्हारे लिए भी कुछ यहाँ पर उपलब्ध है, क्या है, तीसरे स्कंद में 7वें अध्याय में 14वें श्लोक में कहते हैं कि भगवत कथा, भगवान की कथा या भक्ति की कथा श्रवण से इस भौतिक लाभ क्या हो सकता है जिससे कि हम भौतिकवादी लोगों को आकर्षित कर सके। तो कहते हैं अथे संक्लेश समम विदते गुणानुवाद श्रवण मुरारे, अशेष संकेत समम अशेष संकेत। संसार में लोग बड़े क्लेश से विभिन्न प्रकार के दुख तकलीफ से जर्जरित है ना, हर किसी के जीवन में दुख तकलीफ है, ऐसा कोई नहीं है जो मेडिसिन खाता नहीं है। आजकल ऐसा हो गया ये शरीर रोगों से भरा पड़ा है, जिसको पूछो फेसबुक में ही खुश लगते हैं, हर जिंदगी में तो ऐसे ही दुखी रहते हैं, है ना। कहने का उद्देश्य यह है कि जब लोगों को ये बताओगे कि भागवत कथा से क्या है, अशेष संकलेश समम विदते गुणानुवाद श्रवण मुरारे, जितने भी क्लेश है संसार में दुख तकलीफ है इसका निराकरण निवारण करने का सरल उपाय भगवान की कथा, जिससे अपने आप जिस तरह सूर्य उदित होते ही आसमान में आकाश में जो बादल होते हैं और जो कोहरा होता है दूर हो जाता है, इसी तरह भगवान की कथा श्रवण मात्रेण आपके हृदय में आपके जिंदगी में कोई भी दुख तकलीफ हो। तो इसीलिए कहते हैं अतिश संकेत ये सारे क्लेशों को नाश करते हैं। हम विभिन्न और सारे उपाय करते हैं, इसके पास जाओ उसके पास जाओ, इसीलिए भगवान की कथा और भक्त की कथा आज तक गाया जा रहा है। ऐसा भी होता है भगवान से तो भक्तों की महिमा ज्यादा हो गई है, भगवान से भक्त की महिमा ज्यादा हो गई। आज हम भारतवर्ष में अगर घूमोगे राम जी का ज्यादा मंदिर मिलेगा हनुमान जी का, हाँ जी हनुमान जी कह रहे हैं। तो भक्तों की महिमा तो भगवान से भी अधिक है, इसीलिए भगवान जो है भक्तों के गुण सुनने के लिए आतुर रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। प्रताप रुद्र महाराज जिनको चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन देने के लिए मना कर दिया, क्योंकि राजा है। बहुत भक्तों ने विनती किया कि ये राजा है लेकिन आपका भक्ति भी है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले मेरे विषय है, नहीं मिल सकता, मेरा सन्यासी धर्म है, मैं नहीं मिल सकता। प्रताप रुद्र अनेक दिनों तक इंतजार करते रहे, प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि उसके दरबार में बहुत ऋषि मुनि आते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कभी नहीं। महाप्रभु कहते थे वैरागी है, विषय से हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो वही प्रताप रुद्र महाराज से भक्तों ने उपाय कहा, आप विचलित ना हो, आपको एक उपाय बताते हैं चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद कृपा प्राप्त करते। बोले कुछ ही दिनों पश्चात रथ यात्रा होनी है और रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु जब क्लांत हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो एक उपवन है पास में, बगीचा है, वहां जाके विश्राम करते और उस शैली में जो विश्राम करते वक्त आप सुख से जाना और चैतन्य महाप्रभु के चरण को कर लेना, अपना राजा वेश त्याग करके एक साधारण व्यक्ति के रूप में। तो प्रताप रुद्र अपना वेश बदल के साधारण व्यक्ति के रूप में उस रथ यात्रा के दिन जब चैतन्य महाप्रभु विश्राम कर रहे थे तो वहां पर जाकर चरण पकड़ कर सब लोग गोपी गीत का प्रथम श्लोक गई,
जय सीतेधिकं जन्मना व्रज प्रयत इन्द्रिरा स्वास्वदत्रहि दयित दृश्यतां दीक्षुताव का कोई दिता स्वाम विचिन्वते।
जब प्रथम श्लोक का ध्यान किया तो महाप्रभु ने कहा और गाओ और गाओ और गाओ, अब जयति देदिकम से तब कथामृतम तक सुनाते रहे प्रताप रुद्र। और जब तब कथामृतम गाया,
तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीतम कल्म शापहम।
महाप्रभु सुनते ही बिल्कुल तुरंत उठकर उसको आलिंगन कर लिया, देखा नहीं कौन व्यक्ति है, कहाँ से आया है, भक्त है अभक्त है, ब्राह्मण है वैष्णव है शूद्र है, जाति का कोई मिलेश तो नहीं है, नीची जाति का तो नहीं है, कुछ देखा नहीं, उठकर तुरंत आलिंगन कर लिया। तुमने मुझे बहुत बड़ी संपत्ति दे दिया, अरे सज्जन तुम हो कौन, बहुत बड़ी बहुमूल्य रत्न तुम्हें दे दिया। तो जो प्रताप रुद्र को मिलना नहीं चाहते थे विषय कहकर, जब भक्तों की गुण सुना, गोपियों का गुण सुना, ब्रजवासियों का प्रेम का गुण सुना, तो महाप्रभु भी प्रेम से आलिंगन कर लिए। ऐसा है भगवान भी आतुर रहते हैं। जगन्नाथ जगन्नाथ हुए क्यों, कृष्ण जगन्नाथ हुए क्यों, भक्तों का गुण सुनने के लिए। द्वारिका में जब सारे रानियां बैठकर याचना करे कि ब्रजवासियों की कथा सुनाओ, तो जब ब्रजवासियों की कथा चल रही थी, वहां जब कृष्ण बलराम और सुभद्रा आते हैं तो ब्रजवासियों की कथा सुन के कान खड़े हो जाते हैं, उनमें ये भाव प्रकट हो जाता है, अपने आप जगन्नाथ हो जाते हैं। तो विशिष्ट गुण इसीलिए अभी तक गाया जा रहा है, इसको ये जो भगवान का गुण है, ये भक्तों का जो गुण है भगवान को भी आकर्षित करता है, अपना गुण से ज्यादा भगवान भक्तों की गुण, अरे कोई अपना गुण का तब तक सुनेगा, भगवान तो ज्यादा प्रिय है भक्तों का। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु भी चैतन्य महाप्रभु हो के आए, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हो के आए, इसलिए श्री राधा है प्रणय महिमा कितृशो भान है वा, कि राधा की जो प्रणय महिमा है वो कैसा है उसको जानने के लिए आए, राधा रानी की प्रेम की महिमा श्री राधा प्रणय महिमा किद्र सोभान एवा एनाद्भुत स्वादो एनाद्भुत मधुरिमा किद्र सोभा मनी। जो तीन अंतरंग कारण बताए जाते हैं इंटरनल लीगर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव का, इसमें पहला क्या है श्री राधा प्रणय महिमा किद्र सोभान एवा की राधा की ऐसी क्या महिमा है, प्रेम की क्या महिमा है, उसको जानना चाहते। उसको जानने के लिए कृष्ण राधा कृष्ण महाप्रभु हो गए, जगन्नाथ हो गए। तो ये भक्तों की विशिष्ट गुण, इन भक्तों की विशिष्ट गुणों का हम श्रवण करेंगे। और श्रवण करने के लिए भी भागवत में प्रमाण देते हुए कहते हैं कि भक्तों के गुणों को बड़े मन में, जैसे आप क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर की कथा सुनते हैं, स्टार बनना है स्टार की सुनते हैं, हमें भक्त बनना है तो भक्त की सुनना चाहिए। इसीलिए भागवतम के तीसरे स्कंद तेरहवें अध्याय चार नंबर श्लोक में कहते हैं श्रुतस्य पुंसा सुचिर समस्य नन्वंजसा सुरभि जिडित तत्तद् गुणानुश्रवणम मुकुंद पादारविंद हृदयेषाम। कहते हैं किसकी कथा सुनो, तत्तद् गुणानुश्रवणम, उन भक्तों की कथा सुनो, किसकी, मुकुंद पादारविंद हृदयेषाम, जिनके हृदय में भगवान मुकुंद के चरणारविंद नित्य विराजमान है। किस तरह, क्योंकि सदैव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका उच्चारण करते रहते हैं तो भगवान के चरणारविंद उनके हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं। कभी कभी इधर उधर चिंतन चला जाता होगा, लेकिन प्राय जब हम भगवान की कथा सुनने से सन्नि विश्व हरि भगवान तुरंत उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो भक्त मान नहीं चाहता है, लेकिन भक्त का मान सदैव बना रहता है। आज हम मीडिया के थ्रू कितना पॉपुलर होना चाहते हैं, चौपा जब प्रचार किए कौन सा मीडिया थी? कोई मीडिया थी नहीं, ना फोन था, फोन आ गया, चिट्ठी लिख लिख के चौपाद सब डील करते थे, कितनी चिट्ठियां लिखते थे, है ना। चौपाद की भी महिमा किस लिए है, मैं जैसे बोला विचलित नहीं हुए प्रभुपाद जी, कितने दुख तकलीफ आया प्रभुपाद जी के जीवन में। आज प्रभुगा प्रभुपाद जी की महिमा सर्वत्र गाई जा रही है ना, उनके गुणों का बखान किया जा रहा है। प्रभुपाद जी में भी क्या गुण था, कौन सा महान गुण था, यही महान गुण था, विचलित नहीं हुए प्रभुपाद। कितने विपत्ति आई, सुमति मराड़ जी के पास जाते थे तो कितनी बार गए, उनको मिलने नहीं देते थे, प्रभुपाद विचलित नहीं हुए, वहां बैठे रहते। कई असफलताएं उनके जीवन में आई, प्रभुपाद विचलित नहीं हुए। यहाँ तक कि जो समुद्र में जा रहे थे तो वहां भी हार्ट अटैक हुआ, प्रभुपाद विचलित नहीं हुए, ना उसमें चित्त है, विचलित नहीं हुए, इसलिए प्रभुपाद वहां भी विचलित नहीं। तो जब इसीलिए कहते हैं कि जब तक ये आसमान में सूरज चांद चमकते रहेंगे, जब तक ये सृष्टि है आसमान में सूरज और चांद चमकते रहेंगे, और जब तक इस धरती में हरिनाम का प्रचार है, श्रील प्रभुपाद का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में चमकता है। क्यों चमकता रहेगा, कारण प्रभुपाद भी विचलित नहीं हुए। अरे बनाने वाला विचलित नहीं हुआ इन दुख तकलीफों से, और हम रहने वाले विचलित तुरंत हो जाते हैं, अरे मुझे प्रसाद नहीं दे रहा है, इन्होंने माला नहीं दिया, मैं संस्था छोड़ के जाता हूँ, है ना, हमें मान नहीं दिया, इज्जत नहीं दिया। प्रभुपाद जो बनाने वाला उसको कौन सा मान इज्जत मिला, बनाते वक्त मिला था। कितने दुख तकलीफों को झेल कर इसी को, यही तो महान बनने का रास्ता है, जब हम विचलित नहीं होते। यहाँ पर इसीलिए कह रहे उन दिव्य गुणों का इसीलिए गान किया जा रहा है, तो उन भक्तों का महान चरित्र गान इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि वो विचलित नहीं हुए अपने जीवन। तो हम भी अगर जीवन में महान बनना है तो ये सारे परिस्थितियां आती रहेंगी, संसार में जब तक हैं ये सारे परिस्थितियां आती रहेंगी। इन परिस्थितियों को अगर विचलित ना होकर भक्त बने रहे, और आप कहोगे बने कैसे रहे, माइंडसेट क्या होता है, भक्त सहन कैसे कहते हैं, तो ब्रह्मा जी इसका उपाय बताते हैं। ब्रह्मा जी उपाय बताते हैं कि जो भक्त सहन करते हैं इन विचलित परिस्थितियों को, वो कैसे करते, उसका सूत्र क्या है, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो
భుంజాన ఏవాత్మకృతం విపాకం హృద్వాగ్వపుర్భిర్విదధన్ నమస్తే జీవేద్యుముక్తిపదే సదాయ భాత్.
अरे कुछ करने का जरूरत नहीं, एक सूत्र यहाँ ब्रह्मा जी ने बताया है, वो सूत्र अपनाओ तो आपको जीवन में कुछ कर जरूरत नहीं. ये जो भगवान की मुक्ति है, प्रेम है, विरासत में मिल जाएगी. एक पिताजी का धन संपत्ति विरासत में कैसे मिलता है? पुत्र होने के नाते बने रहोगे तब. अगर पिताजी कभी विल बना दिया कि बेटे को त्याग कर दिया मैं, तो माल मिलने वाला नहीं है ना, आपको बने रहना पड़ेगा. तो यहाँ कह रहे हैं तत्तेनु कंपा सुसमीक्ष मानो भुंजान एवात्म कितम विपाकम. करना क्या है कि भक्त बने रहना है, बस आपको भक्त बने रहना है. और किस तरह बने रहना है? ये जो जीवन में विपाकम है, हमारे कर्म फल है, इन कर्म फलों को भोगते हुए इसमें डिस्टर्ब नहीं होना है कि अरे भगवान की इतनी माला कर रहा हूं फिर भी एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ, चलो माला कोई नहीं. उसको विपाक, हम अपने कर्म का ही विपाक है. विपाक मतलब क्या होता है? पाक मतलब बनाना, खाना. अब आप खुद ही खाना बनाए हो, गलती से उसमें तुलसी तुलसी की पत्ता के जगह अगर नीम का पत्ता गिर गया तो क्या होगा? कड़वी हो जाएगी. वो अपना ही बनाया हुआ है ना. तो हम जो कर्म है फल एक अपना विपाक है, इसको सहन करना है. बस सहन करते हुए करना क्या है? इस बात को भी विदधत नमस्ते. ऐसा नहीं सोचते रहना है क्या भक्ति में आ गए, कितना जिंदगी बढ़िया था, वो सुना भी नहीं है. भगवान का धन्यवाद करते रहना है कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है. और कैसे? हृदय बाग बपू, हृदय से भी, वाणी से भी, बपू से भी, सदैव हृदय बपुर भी विदधत नमस्ते. इस तरह जीवित जो पदे, जो इस तरह जीवन व्यतीत करता हुआ जीवन व्यतीत करता है उसको क्या होता है? मुक्ति प्रदेश दायक. मुक्ति पद मतलब होता है जिस पद में, जिस चरणों में मुक्ति आश्रय लेकर बैठे. इसका एक अर्थ ये भी है और दूसरा ये है कि मुक्ति के पद मतलब मुक्ति पद प्राप्त हो. तो इस तरह सरल रूप से आप भगवान के चरणों में, ये अगर उद्विग्न चित्त नहीं होंगे, निष्ठावंत नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे, इन संसार की जो भी उत्पाद है इन उत्पातों से विचलित नहीं होंगे, तो फिर सरल रूप से विरासत में, जैसे एक पिता के पुत्र को विरासत में सारी संपत्ति मिल जाती है, इसी तरह भगवान की जो भी संपत्ति है, जो भी योग शक्ति है और जितने भी ऐश्वर्य हैं, वो अपने आप आपको विरासत में मिल जाएगा. बोलो अरे सरल उपाय है ना. तो करना क्या है? बस विचलित होना नहीं है. कभी कुछ हो जाता है, मैं जैसे बोला संस्था में है, इस संसार में है, लोगों में है, कोई परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्शन है सब में. इन परफेक्शन में भी रह रहे हैं, इन इम्परफेक्शन में रहते हुए इसी तरह हमको चारों तरफ हम इम्परफेक्ट हैं, सब में सारे गुण नहीं है, है ना जी. तो कभी कभी डिस्टर्बेंस तो होगा, पीछा का नहीं होगा, सहन कर, सहन करके आगे चलते रहेंगे. तो आगे चलते धीरे धीरे भगवान की भक्ति अपने आप सरल रूप से प्राप्त हो सकता है. इसीलिए कहते हैं अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा तथा रसम हो नितराम दिवत्वा. दूसरी का दोष और गुणों को नजरअंदाज करते हुए, किसका गुण है किसका दोष है नजरअंदाज करते हुए भगवान की सेवा भजन करेंगे तो बड़े सरल रूप से इन कथाओं में भगवान को. दो मिनट और लूंगा तथा को विश्राम दूंगा. दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि गुणों को प्राप्त करें कैसे? तो दिव्य गुण है चर्चा के, प्राप्त करें कैसे? तो इसका उदाहरण देते हैं. दत्तात्रेय महाराज की तरह सबने गुण ग्रहण किया. दत्तात्रेय जी की महिमा क्या है? श्रवण किया है ना दत्तात्रेय जी की कथा भागवत में. क्या किए थे दत्तात्रेय? 24 गुरु बनाए थे, सबसे कुछ ना कुछ गुण लिए. वैश्या से भी गुण लिया, एक जानवर से भी गुण लिया, पेड़ पौधों से गुण लिया. वैश्या से भी गुण लिया, सांप से भी गुण लिया, अजगर से भी गुण लिया. और हम हमारे पास से ऐसे 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 मधुर मधुर जिस धाम में विराज रहे हैं, अरे जिस धाम की रजकण प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शिव आदि तपस्या करके आकांक्षा करते हैं, उद्धव जैसे व्यक्ति जो कि शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्यम विद्वानों में शिरोमणि, वो कहते हैं आसाम हो चरण रेणु दुसाम हम चिंदा बने किमी गुलमल तो सभी नाम है भगवान, अगर वरदान देना है तो यहाँ का रज मुझे दे दो। इन रज में रचे पीछे हमारे जितने भक्त हैं इन भक्तों का दुख नहीं मिलते, जो सुबह मंगला आरती उठते हैं नित्य भगवान का नाम जप कर रहे हैं भगवान का दर्शन कर रहे हैं प्रणाम कर रहे हैं, केवल एक प्रणाम से मुक्ति हो जाते हैं। कृष्ण से एकस्य कितः प्रणाम रसात्मेध्यम व्यतेन तुल्य रसात्मेध पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणाम पुनर्भवाय, कहते हैं जो भगवान के एक बार प्रणाम कर ले उसकी फिर इस आवागमन में आना नहीं पड़ता, और भक्त कुछ भी ना करे दंडवत तो करता ही है, तो ऐसे भक्तों में गुण नहीं मिल सकता। तो भक्तों में गुण को ग्रहण करें दत्तात्रेय महाराज की तरह, और ऐसे भक्तों का गुण लेकर हम धीरे 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 गुणी हो सकते। आप क्या लेते हैं क्या देखते हैं वो स्टोर में आ जाता है, हार्ड ड्राइव में स्टोर होता है। आपने दोस्त देखा हार्ड ड्राइव में दोस्त आता है, वायरस आता है बोलते हैं ना, वायरस आता है कैसे, दूसरे में वायरस होगा इसमें आ जाएगा अगर कनेक्ट करोगे तो। आप जब दोस्त देखते हो तो मेंटली यू आर कनेक्टेड योर सेल्फ टू दैट पर्सन, तो मानसिक रूप से उसके गुणों का ही चिंतन कर रहे हैं। ध्यान विध्यान संज्ञा ध्यान करोगे जिसका उसका आएगा, इसीलिए कह रहा अन्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, अगर कथा रस पान करना है कह रहे हैं अन्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसम हो भगवान, कथा रस नित्य पान करो और उस कथा रस से ही अपने आप, क्योंकि जहां पर कथा होती है वहां पर भगवान सदैव विराजमान, भगवान सदैव विराजमान यत्र गायन्ति मद्भक्ता, और जब भगवान है तो यशास्त्र भक्ति भगवत अपना सारे गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो कथा के द्वारा सारांश यही है कि पहले तो है इस विघ्न विचलित नहीं होना है परिस्थितियों जो भी परिस्थिति आ जाए, और सत्य में कंपा मतलब विचलित ना हो भगवान का भजन करते रहे ग्रहण करते रहे, तो इसी तरह कथा के श्रवण के द्वारा धीरे धीरे ये सारे दिव्य गुण भी हम ग्रहण कर सकते हैं। ये दिव्य गुण अपने प्रयासों से नहीं भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है, और भगवान की कृपा से जब प्राप्त हो जाती है तो कभी अहंकार करना नहीं, तो ये सारे गुण भी पड़ जाते हैं। देने वाला भगवान है और लेने वाला भी, ये गुण हमसे नहीं है, ये गुण भगवान से ही आते हैं, गुणों का कान भगवान है, आप तो मुझ में है, कोई आप में गुण आ गया तो समझ में ना भगवान ने कृपा करके ये गुण दिया, गुणों को स्थान गुणों का सागर तो भगवान है, जो भी दिव्य गुण आते हैं वो भगवान से ही आते हैं भगवान की कृपा से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रहलाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सदाई गौर सदानंद।